ॐ नमो भगवते वासुदेवाय
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 भगवद्गीता एक आरोप वैसे ही कोई ऐसा उदाहरण ले लेंगे जो लोचनदास ठाकुर की विशेषतया प्रशस्ति करेगा। नौवें अध्याय जो परम ज्ञान के परम दुखी ज्ञान के नाम से जाना जाता है, इसमें भगवान के मुख से हमें ये संदेह मिलता है कि अर्जुन को ही परम दुखी ज्ञान इसलिए देते हैं वो जो इनका के साधु नहीं है इसलिए, और ये ज्ञान सारे ज्ञानों का राजा कहलाता है। और ज्ञान में जो गुप्यता है तो गुप्यताओं में भी सर जो सर्वोपरि होता है तो वो राजविद्या राजगुप्यम के नाम से जाना जाता है। राजविद्या राजगुप्यम पवित्रम इदमुत्तम प्रत्यक्षावगमन धर्म्यम सुसुखम कर्तुम अभ्येयम। भगवान कहते हैं कि ये भक्ति का जो ज्ञान है तो सब ज्ञान, ये ज्ञान सब विद्याओं का राजा है, जो समस्त रहस्य में सर्वाधिक गोपनीय है, यह परम शुद्ध है। और चूंकि ये आत्मा की प्रत्यक्ष अनुभूति कराने वाला है अतः यह धर्म का सिद्धांत है, यह अविनाशी है और अत्यंत सुख पूर्वक संपन्न किया जाता है। तो तात्पर्य में भक्तिविदान स्वामी शुक्रपाल ये बताते हैं कि भगवद्गीता का यह अध्याय विद्याओं का राजा राजविद्या कहलाता है, क्योंकि यह पूर्ववर्ती व्याख्या समस्त सिद्धांत एवं दर्शनों का सार है। भारत के प्रमुख दार्शनिक गौतम प्रणाम कर्मी याज्ञ और कृष्णांडीय तथा वैश्वान रहते हैं, सबसे अंत में व्यासदेव आते हैं जो वेदांत सूत्र के लिए। अतः दर्शन या दिव्य ज्ञान के क्षेत्र में किसी प्रकार का अभाव नहीं। अब भगवान कहते हैं कि ये नौ अध्याय ऐसे समस्त ज्ञान का राजा है, यह वेद ध्यान से प्राप्त ज्ञान एवं विभिन्न दर्शनों का सार है। यह गुह्यतम है क्योंकि गुह्य या दिव्य ज्ञान में आत्मा तथा शरीर के अंतर को जाना जाता है। समस्त गुह्य ज्ञान के इस राजा विद्या की पराकाष्ठा है भक्ति हो, जो देह और आत्मा का ज्ञान प्राप्त करने के बाद की बात बताता है। तो भक्ति सामान्य सब मनुष्य जानते हैं, समझते नहीं, जानते हैं क्योंकि सब भगवान के अंश हैं, इसलिए बीज के रूप में जानते हैं, लेकिन बीज का विकास पूर्ण भक्ति वृक्ष में होना चाहिए और ये वृक्ष प्रेम का फल देता है। वृक्ष की कीमत नहीं होती जब ये फल नहीं देता। आजकल के कलयुग के वृक्ष में जब जलाने के लिए लकड़ी जब चली गई तो अन्य चीजों के लिए लकड़ी कहां है, इसलिए जो वृक्ष में फल नहीं आते उनकी भी बहुत कीमत होती है। और कलयुग में वृंदावन इत्यादि ये सारा इलाका ऊपर से लेकर राजस्थान से सब जगह बबूल के ही पेड़ मिलते हैं, बबूल या यूकेलिप्टस। वैसे इन दोनों वृक्ष की कोई कीमत नहीं, फिर भी आजकल की इकोनॉमी में बहुत कीमत है। ये दोनों वृक्ष अन्य वनस्पतियों के लिए बेकार होते हैं, क्योंकि सारा पानी चूस लेते हैं कहीं से भी, और दूसरी चीजों को उग नहीं देते। ये कलयुग के वृक्ष, उसकी कोई कीमत नहीं। पर लेकिन ऐसे तो वृक्ष बात है जहां हम कहते हैं कि उसकी कोई कीमत। इसी तरह बहुत सारे ऐसे जीव हैं जो व्यर्थ के जीव हैं, जिनकी कोई कीमत नहीं। मनुष्य जन्म में थोड़ी कीमत की अंदाज बताया जाता है, लेकिन लवारिश की तरह बहुत ऐसे मनुष्य हैं जिनकी कोई कीमत नहीं, जिनकी जांच पड़ताल भी नहीं कर पाते। और खास करके रास्ते पे यदि किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, मरते हैं, तो मुश्किल हो जाता है कि ये कौन है। यानी कि व्यक्ति की कीमत कहाँ है, व्यक्ति की कीमत उसके परफेक्शन में, उनकी पूर्णता प्राप्त करने में। जो हम अपने बारे में ही अनजान रहे तो हमारी क्या कीमत, तो पशु के पशु के बराबर। यानी कि हमारे अपनी असलियत, हम आत्मा है, भगवान के अंश है, भगवान के अंश भगवान नहीं होते, लेकिन भगवान जैसे हो सकते हैं। भगवान जैसा होना और भगवान होना दोनों में अंतर। भगवान की दिव्यता प्राप्त करना हर एक जीवन का लक्ष्य होता है, क्योंकि इनके अंश दिव्य होते हैं और दिव्यता में परिपूर्ण होता है। जो व्यक्ति अपनी दिव्यता की पहचान किए बिना मर जाता है तो पशुवा जिंदगी में वो कुछ नहीं पाता। तो इसी तरह जो सीखना है वो सारी शिक्षाओं में भक्ति की शिक्षा सबसे उत्तम, उसे सर्वोत्तम ज्ञान के भक्ति के ग्रंथ को सर्वोत्तम ग्रंथ, उसके ऊपर कोई नहीं है। तो भगवान इसलिए ये वही जो प्रकट कर रहे हैं अपनी भक्ति के बारे में ज्ञान, वो विद्याओं का राजा है। और विद्या में तो शरीर और आत्मा में भेद करने की प्राथमिक अवस्था होती है, तो वो आवश्यकता भी विद्या कहलाती है। व्यक्ति अपने निर्गुण निराकार भावनाओं को भी आगे बढ़ा सकता है, तो वो ब्रह्म ज्योति तक जाने के लिए लालयित होता है, अपने को भगवान में एकाकार करने की भी भावना रखता है। लेकिन ये भी काम चला होता है उसे भी ऊपर, जब भगवान की तीव्र भक्ति करने के बाद वो वैकुंठवासी करता है, तो वैकुंठ में चार प्रकार की परम सिद्धि पाकर जाता है। वो सिद्धियां मुक्तियां कहलाती हैं। लेकिन उसे ऊपर का भी ज्ञान, जो गोलोक वृंदावन में भगवान का निजी प्रेम प्राप्त करके इनके अंतेवासी बनना, अंतेवासी बनना यानी कि उनका पार्षद बनना, उनकी सेवा में लगे रहना, भगवान के प्रेम के लिए ही जीने वाला। और ये चार मुक्ति से ऊपर पांच रसों में भगवान के साथ आदान प्रदान करने वाला, जो सनातन अवस्था वाला ये जो भाव है, वो भक्ति को आभार है, वो सिर्फ गुरु वृंदावन में कर सकते। इसी तरह गुह्यों में से भी गुह्य, अति गुह्य, प्रभुपाद समझाते हैं गुह्य यानी गहरा। जो सामान्य मनुष्य जहां बुद्धि का ठिकाना नहीं है तो गहरापन कैसे जानेंगे, लेकिन गुह्यतर, गुह्यों में भी अधिक गुह्य है तो गुह्यतर कहलाता है। उसके लिए बहुत कम लोग जानेंगे, लेकिन गुह्यतम, गुह्यतम यानी कि गुफियों में ही गुह्य सर्वश्रेष्ठ गुह्य। आत्मा जितना गुह्य है अपने शरीर में इतना धर्म भी गुह्य है। जो आत्मा को नहीं जानता तो धर्म को कैसे पहचान। फिर भी हम ऐसे वातावरण में पलते हैं क्योंकि धर्म का ज्ञान न होने के बावजूद भी हम किसी मान्यता को पकड़ सकते हैं, लेकिन मान्यता गुह्य नहीं है। धर्म का पालन गुह्य है, लेकिन धर्म के पालनों में भी जब भगवान ने सूचित किया है और उनके विशुद्ध भक्तों द्वारा जो पारित हुआ है, जिसकी पूर्ण दया हमें कारण भी मिलती है, तो भगवान के विशुद्ध भक्तों के चरण कमलों में अनुसरण करने को ही अति गुह्य से गुह्य बताया। धर्म से तत्व निहितम गुहाया महाजन स्वतंत्र। धर्म का वास्तविक हृदय कहां जन के कर्म चरण कमलों चरणों से प्राप्त होता है। वहां जो महाजन कहने की विशुद्ध भक्त है, तो विशुद्ध भक्तों के चरण कमलों में चलना बहुत गुह्य बात है। इनको सिर्फ गुरु स्वीकार करना इतना नहीं, लेकिन उनके आदेशों का अनुसरण करना, इनको चरण इनकी चरण कमलों में चलने को कहा। और ये सबको सर्व भक्तों को करना पड़ता है। ऐसा नहीं कि हम आपके चरण कमल में नहीं चलेंगे, हम तो इसको ही पकड़ के बैठेंगे, इनके बाद कोई हो ही नहीं सकता, ऋत्विक वाद ऐसा दावा करते हैं। यानी कि नहीं, श्री प्रभुपाद जी के चरण कमल में चलने वाले हैं न किसी के, वो अपने आप अपनी मान्यता अपने तक सीमित नहीं रखते, दुनिया को भी धोखा देते हैं। तो ये सब गुह्य से परे हो जाते महाजनों इन तस्य पंथा, यानी कि भगवान के विशुद्ध भक्त, और उसमें भी खास करके बाल महाजन, उनके चरण होना ये बहुत बड़ी बात है, गुह्य से गुह्य बात है। ये लोचनदास ठाकुर सिखाते, लोचनदास ठाकुर चैतन्य महाप्रभु के समय में बहुत ऐसे विनम्र भक्त हो गए। चैतन्य महाप्रभु जब थे तो उनकी बाल्य लीला और पुख्तावस्था में जब विष्णु प्रिया शाम जब शादी हुई तो वहां की चर्चा न तो वृंदावन दास ने लिखी थी न कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने लिखी थी, लेकिन उन्होंने चैतन्य मंगल में लिखी। ये बहुत गुह्य भाग विष्णु प्रिया चैतन्य महाप्रभु के सिर्फ पत्नी नहीं थी, साक्षात लक्ष्मी राधा रानी का जिनका सारा विरह भाव का स्पष्टीकरण है। तो चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास लिया, उसके अगले दिन इन दोनों के बीच का वार्तालाप, ये वार्तालाप लोचनदास ठाकुर की स्वयं की अनुभूति, ये अनुभूति आध्यात्मिक स्तर वाली है, इसलिए वो कोई सहज भाव के उनके मानसिक तरंग द्वारा नहीं लिखी गई। इसके लिए भक्ति का तत्व जो अति गुह्य है उसे ठीक ढंग से समझता है तो परंपरा की दृष्टि कभी करता है। ज्यादातर हम भक्तों के लिए लोचनदास ठाकुर के ये कृतियां का बारीकाई से अभ्यास करने को प्रभुपाद जी ने नहीं कहा, न तो राधा और कृष्ण की लीलाएं जो इतनी अंतर्गत विशुद्ध प्रेम की झांकी कराने वाली हैं, उनका भी बारीकाई से अभ्यास करने को कहा। जब तक हृदय रोग काम अपहरोति नहीं होता, हृदय में जो हृदय का रोग क्या है, हार्ट अटैक नहीं है, ब्लड प्रेशर नहीं है, ये कामना, काम की ग्रंथि हृदय में यदि गहराई से इतनी जड़ गई है, जम गई है कि ये ग्रंथि जब तक टूटती नहीं तब तक राधा कृष्ण और विष्णु प्रिया चैतन्य महाप्रभु की ये अति प्रेम युक्त जो गहरी बातें हैं वो समझने के लिए लाए। प्रभुपाद जी ने हमें इसलिए वंचित रखा, इसका मतलब ये नहीं कि हमें एक्सेसिबल नहीं, उपलब्ध है लेकिन हमारी कोई ऐसी हैसियत होनी चाहिए जो हमें क्वालिफाई करता। लोचनदास ठाकुर इतने गहरे अनुभूति कर चुके विशुद्ध भक्त हैं, वो हमें भक्ति का तत्व समझाने के लिए कहते हैं कि मैं नरहरि सरकार का शिष्य हूं, ये मेरे गुरु नरहरि सरकार चैतन्य महाप्रभु के एक निजी परिकर थे, लेकिन वो सीधे चैतन्य महाप्रभु की सेवा में नहीं थे, वो रूप गोस्वामी द्वारा स्थापित राधा गोविंद जी मंदिर वृंदावन इनके पुजारी के रूप में एक विनम्र भाव से पूजा करते, लेकिन इनकी विनम्रता इनके सारे बाहर के चरित्र में दिखाई देती, इतनी नहीं आंतरिक चरित्र ऐसा है। आंतरिक चरित्र में ये नरहरि सरकार ठाकुर बड़े विचक्षण थे, विचक्षण बुद्धिमान थे और साथ साथ में वैष्णव सदाचार शिष्टाचार के भी बहुत अगुवाई करते थे, लेकिन उस समय में बहुत सारे भक्त अनुयायी होकर कभी कभी गड़बड़ियां बनाते रहते थे, मंदिर का सुचारू रूप से संचालन करने में बहुत बाधाएं आती है। उनकी ये नरहरि सरकार कृष्ण प्रेम में पूरे डूबे थे, फिर भी आध्यात्मिक संचालन के लिए उनका आग्रह बना रहा। हम भौतिक संचालन कर सकते हैं, आध्यात्मिक तरह से संचालन करने के लिए हरेक संचालकों को प्रभुपाद जी ने सूचना दी, सारी जीबीसी सब जो जो संचालन में आते हैं सबको आध्यात्मिक रूप से संचालन करने को कहा, लेकिन वो स्थिति में आने के लिए सबको काफी सावधानी बरतनी पड़ती है कि कहीं भी वैष्णव अपराध न हो जाए, कहीं भी वैष्णव अपराध न हो जाए। तो कहने का मतलब है कि नरहरि सरकार भक्ति रत्नाकर नामक ग्रंथ में ये सारी बातें संग्रहित की। भक्ति के रसतत्व में भी उन्होंने बहुत सारा लिखा है, लेकिन ये रस में रसाभास न हो, रसों की शुद्धता बची रहे, सुरक्षा रहे और भक्ति वास्तविक स्तर पे आती रहे, तो वो नरहरि सरकार ठाकुर ने ये भक्ति रत्नाकर ने बताया। तो साथ साथ में जो भक्त ना समझ होकर कुछ अपराध कर लेता है, तो अपराधों की कैसे उसके योग्य दंड या कुछ भी हो, उसके लिए वैष्णव अपराध न हो, इस ढंग से उसका सुझाव दिया है कि हर एक भक्त के साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए। तो ये सब मार्गदर्शन अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण महानंद संघ में हमें जीव सिखों को पालन करना होता। तो ये नरहरि सरकार ठाकुर की सेवा में लोचन दास ठाकुर स्वयं बड़े भक्त कवि थे। उन्होंने बहुत सारे भजन चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु, गौरीदास पंडित, इनके चरित्रों में और खास करके इनकी सेवा में बदल रहने के लिए करा, बहुत सारी रचनाएं की और खुद संगीतज्ञ थे, वो गाना बजाना सब कुछ जानते थे। लेकिन ये सब इनकी प्रशस्ति में दो प्रकार की बातें समझ में आती हैं कि वो भगवान का नित्य परिकर होने के बावजूद वे बड़े प्रचारक थे। फावड़े को फावड़ा के मसीदा के इनके भजनों से मिल जाता है। इनके भजनों में स्पष्ट कहना है, ए पापी तेरा कोई दर्द नहीं है, पापी को पापी कहना, लेकिन उसके पीछे बात धारदार असर होती है कि जो वो उसका पापी जीवन नष्ट हो जाए।
परम करुणा पाउरी जनमिता
All right.
वो ऐसा बड़ा लाभ से और कोई लाभ नहीं पाता। तो लेकिन उसके लायकात, ये भजन करने की लायकात के हृदय में जो विषय भावना है उसका त्याग करना पड़ेगा। बिना काम विषय भोग की इच्छा बिना यदि हम बन जाते हैं तो भगवान का निजी परिकल्पना में भी कोई आपत्ति नहीं, आसान। इसीलिए दोनों श्री चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु का दृढ़ विश्वास करो, भजन करो, विषय को त्याग कर इन दोनों के प्रेम रस में डूबकर मुख से हरी हरी बोलते रहो। ऐसी दया करने के लिए न तो कोई अवतार आया है, एक चौबीस अवतार कोई दिन आता है, कोई दशा अवतार भी होता है, तो कोई तो कहते कि हर एक योनि में भगवान अवतार लेते ही रहते हैं। लेकिन इतना दयालु कोई नहीं बन सकता जो चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु जो कृष्ण और भगवान के रूप में आए। तो इनका गुणगान सुनकर पशु पक्षी भी रोने लगते हैं। तो पाषाण हृदय वाला, पत्थर हृदय वाला मनुष्य बेदरकार रहता है, लेकिन उनको जबरदस्ती से यही सुना है,
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे,
तो भी वो भी तीव्र में लगेगा। इसलिए संकीर्तन यज्ञ इस कलयुग में और इस 10,000 साल में फैलता है और फैलेगा, इनको कोई रोक टोक नहीं करेगा। धनुचंद दास अपने को ये अपनी जो सामान्य स्थिति है कि हम गत संसार में पड़े रहे इंद्रिय तृप्ति के लिए, भोग करने के लिए जीते रहते हैं, तो वो हमें भगवान के लिए प्रेम के लिए जो आत्मा का स्वधर्म है उनसे वंचित रखता है। इसीलिए भगवान के चरण कमल नित्यानंद प्रभु चैतन्य महाप्रभु को भगवान के रूप में जानता भी नहीं। यदि कुछ पढ़ने में आता है तो उसको भक्त के रूप में समझते हैं, लेकिन ये भगवान हो सकते हैं इन लोगों की खोपड़ी में जाता है। इसीलिए विशुद्ध भक्तों के चरण कमल में यदि हम अनुसरण करें तो अवश्य इन पर दृढ़ विश्वास बनेगा और नहीं तो अपने ही दुष्कर्मों के कारण हम यमदूत के आनंद के लिए हम पीड़ा करते हैं। दूसरा भजन सबको मिल गया है, अभी देखो नित्यानंद प्रभु के बारे में कैसी निष्ठा होनी चाहिए, वो अपनी निष्ठा बताते हैं कैसे ढंग की निष्ठा होनी चाहिए। अक्रोध परमानंद नित्यानंद राय, अक्रोध परमानंद नित्यानंद राय, अक्रोध परमानंद नित्यानंद राय, अभिमान शून्य निताये
I'm not afraid of the dark।
इनका हम बहुत सावधानी पूर्वक
भजन कर,
यदि थोड़ी सी भी गलती हो जाती है बहुत क्रोधित हो जाता है।
लेकिन ये क्रोध
दैनिक या अपने जीवन में जैसे भक्ति क्रोध आता है जो कामना की पूर्ति नहीं होती तब ऐसा क्रोध नहीं है। अवधूत लोग यदि क्रोध करते हैं या भक्त लोग भी कभी कभी क्रोधित हो जाते हैं तो भगवान की सेवा करेंगे क्रोधित बनने की आवश्यकता है। ब्रह्मा जी सराहना करते ऐसा क्रोध ठीक है। कभी कभी माता पिता का प्रश्न करने आते हैं हम हमें बहुत गुस्सा आता है हम क्या करें। गुस्से को थामने के लिए नित्यानंद प्रभु का एक स्वभाव है वो वास्तव में क्रोधित नहीं होते। क्रोध और के परम आनंद के लिए भगवान चैतन्य महाप्रभु के आनंद के लिए वो अद्वैताचार्य पर भी क्रोध करते हैं। अद्वैताचार्य इन दोनों को सब भक्त बुलाते हैं प्रसाद करते लेने के लिए। वो गृहस्थी थे गृहस्थी करता तो एकमात्र धर्म प्रसाद वितरण करना है। तो नित्यानंद प्रभु देखते हैं कि कितना बनता है और रसोई में घुस जाते हैं इतना ही बनाया तुमने। सीता माता जी को नहीं बोलते लेकिन अद्वैत है तो टोना मारते ये सारे जगत को खिलाने वाले विष्णु भर को तू इतना खिलाएगा कौन खाता है तेरे करके गुस्से में आ गया बिना भेजे इनको एक तो खाने को बुलाया हम तो ये समझते हैं कि इनको खाने के लिए निमंत्रण है और कोई गेस्ट हमारे यहाँ ऐसा रुआ करके नहीं खाता तो हम क्या करें या खाना तो खाने का निकल नहीं सकते। लेकिन ये क्रोध भगवान के ऊपर आनंद के लिए ज्यादा भक्तों में और उत्तेजन देने के लिए ये क्रोध काम क्रोध सेवा में लगा नित्यानंद प्रभु सेवा में लगा जानते हैं इसीलिए वैसे हैं तो ये फक्कर बाबा किसी की कोई परवाह नहीं करते खुद की नहीं रखते इसलिए नित्यानंद अवधूत इनका दिमाग भगवान के प्रेम में इतना पागल हो गया है कि सचमुच कभी कभी दुनिया में पागल जैसे बरतते हैं। तो इसलिए इनका अभिप्राय किसी को लेने में डर लगता है जबकि वो भगवान के हमेशा के आनंद के लिए वो जुड़ने वाले नित्य आनंद इनका नाम ही बताता है कि ऐसे कौन सा आनंद वो नित्य लूट रहे हैं। ये भगवान के प्रेम के लिए जीने वाले भगवान के चेतन महाप्रभु के भैया बन करा है। तो ये अक्रोध बताने वाले उनमें कोई क्रोध नहीं है। देखो ये जो जांच पड़ताल करनी है तो चेतन महाप्रभु का आदेश कैसे अपने मथे को उठाते हैं ये बिना अभिमान अभिमान शून्य हो नगर के सारे नगर में नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर दोनों भगवान के नाम का प्रचार करने के लिए निकलते हैं। यदि कोई क्रोधित होता तो वो प्रचार नहीं कर पाता। ये दोनों विनम्रता की इतनी बड़ी मूर्ति है इनका उदाहरण यूं देखे तो हरिदास ठाकुर सिर्फ हरिनाम जिनका आश्रय है न तो समाज में उनका स्थान है। एक तो मुसलमान, उसके उपरांत वो पढ़े लिखे भी नहीं थे और अपने मुसलमानों ने तो उनको बाहर निकाल दिया था। बचपन से इनका कोई था नहीं भगवान के नाम का अलावा, और कैसे वो हरिनाम करता है और हरिनाम द्वारा ही चैतन्य महाप्रभु ने उसकी पहचान की है। कि ये नमाचार्य इसलिए है कि सिर्फ भगवान के नाम पर स्वीकार कर परम सिद्धि पा चुका है, इसलिए भगवान के बारे में, भगवान की सेवा के बारे में, भगवान के नाम की महत्ता के बारे में सब कुछ बता सकता है। इसलिए नमाचार्य ये दोनों में सिर्फ नाम का प्रभाव के कारण वैष्णव शिष्टाचार में सबसे बड़ा शिष्टाचार विलंबर होगा। जब ध्रुव से भी अधिक मानता है, अनीच मानता है, तो ध्रुव को उठाकर क्या करेगा, अपने मस्तक पर लगाए। ये तो ध्रुव को अपने दांतों के बीच में उठाते हैं, दांतों के बीच में उठाना ध्रुव को उठा दांतों के पशु मुग्धा होकर घास खाते पकड़ लेते हैं मुंहों से, तो उसी तरह अपने को इतना नीच मानते प्रणाम नीचे सूनीचे नीच तो है लेकिन सूनीचे सबसे अधिक नीच सूनीचे। तो इसके साथ तरुण की सहिष्णुता, एक वृक्ष जैसे सहिष्णुता कोई तो रहा है। वृक्ष की डालियां काटो, वृक्ष के जड़ को काटो, कुछ भी काटो, वृक्ष इतना सहिष्णु अमानी मान देना कितनी व्यवस्था, अपने को मान की अपेक्षा नहीं लेकिन साथ साथ सबको मान देने के लिए तैयार। तो ये जो अधम है पतित है तो उनके घर जाने के लिए इनके जैसा इनका आचरण, लेकिन विशुद्ध आचरण जिसे कहता है, एक भौतिकता से अधम और पतित है तो ये आध्यात्मिकता में इतने ऊंचे हैं, फिर भी उन लोगों की बराबरी करने के लिए, इनको सिखाने के लिए वो इतना विनम्र स्वभाव जो गिरा हुआ है भौतिक रूप से। तो जो व्यक्ति इतना पहुंचा हुआ है तो अपने आप को भी त्रुण से अधिक गिरा हुआ मानता है, यानी गिरे गिरे की बराबरी तो होगी कम से कम, हम दोनों गिरे लेकिन हम तेरे जैसे गिरे नहीं है। तू गिरा है तो तेरे पर हम अभिमान करके आए या हम बड़े पंडित के रूप में तेरे सामने आए, तो हो रहा है हाँ पंडित जी आप तो सब कुछ जानते हो, आप कहो बोलो क्या है, लेकिन वो नहीं करेगा नहीं सुनेगा। इसलिए विनम्रता का व्यवहार सबसे बड़ा कुछ व्यवहार कर रहा है कि जो गिरे हैं भौतिकता से तो आध्यात्मिकता में ऊंचे चले हुए। कैसे गिर सकते फिर भी वो भक्ति में इस ढंग से गिरा हुआ स्वभाव कि हमारी कोई कीमत नहीं, हम आश्रित है, हम पराधीन है, लेकिन भगवान के चरण कमल पर हमारा आश्रय है, भगवान को पराधीन है, हम किसी मनुष्य व्यक्ति को पराधीन हम दूसरों की गुलामगिरी नहीं स्वीकार करते, हम भगवान के गुलाम हैं। इसका अभिमान करके नहीं रखना, नहीं तो भक्ति सफा हो जाएगी। हम 35 साल से माला कर रहे हैं, तो कौन होता है, तो दाज करता नहीं है। ऐसी बात प्रणाम कृष्ण मुझे, जब भगवान को भी ऐसा व्यवहार करने की भावना होती और करते अपने को उदाहरण बनाते, तो जो नवसिखिया भक्त हैं या प्रचारक हैं उनके लिए तो क्या कहना चाहिए। ये भाव कोई सहज वृत्ति वाला नहीं, साजिश नहीं। वो कह रहे हैं कि अधमा पति तजीरे बारे बारे ही है और हरिनाम महामंत्र हरिनाम महामंत्र देना, लेकिन उनके पास बुलाना बहुत आवश्यक है। दीक्षा मांगने जाओ, दीक्षा में कहो वह एक बार हरिनाम बोलो, बोलो रवि बोलो, बोल क्या है उद्देश्य देते हैं तो बोल हरि बोल। हम आपको कहेंगे हरि बोल, आप क्या कहोगे हरे कृष्णा बोल, तो नाम बोल हरि बोल यानी हरि का नाम बोल, तब बोलेगा हरे कृष्णा। सामने हरि बोल करने से क्या कहेगा वो, हम कहते हैं हरि बोल तो तुम हरि बोल ना, हरि बोल का उत्तर होता है हरे कृष्ण। तो ये नित्यानंद प्रभु की स्टाइल है, भाई एक बार हरि का नाम बोल। इसीलिए वो जगाए माधाए जो देखो ये हरि बोल वाला आ गए मारो उसको, वो तो सामने नहीं कहता कि तू भी हरि बोल, तू बोल हमें बोलने की आवश्यकता है। हरि बोल जो हरि बोल करता है वो भी हरि बोल करेगा, तो हरि कौन बोलेगा, इनका नाम बोलने को कह रहे हरे कृष्ण, इसका उत्तर होता है। तो नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर दोनों को आके देखे वो जगाए बड़ा मान है, वो इतने गिरे हुए थे, ब्राह्मण होते इतने गिर चुके थे, भौतिकता से पतित हो गए थे, आध्यात्मिकता से पतन तो कब का हो गया, नहीं तो भौतिकता से कौन पतित होगा। तो ऐसे देखो ये हरिपुर वाले आ गए इनको मारो, और ये लोग सिर्फ भगवान का नाम बुलाने के लिए ऐसे विनम्रता दाखिल करते हैं जो आसमान जमीन का अंतर बन जाता है। विनम्रता विनम्रता में भेद पड़ता है, ऐसे विनम्रता हम अपने आप को बेच देते हैं, हम गुलाम आपके बन जाएंगे, मेरी बात करेंगे। हम लोग कैसे प्रचार करते हैं, हम लोग जाते हैं अरे चलो लोग हम तो इच्छुक है कि भाई हम हमें अभी ये तो बोलता हो गया है, अपने लिस्ट में आ गया ना, इनको हमारे ही सेवा की आवश्यकता नहीं, अभी उसको ही सेवा में जुड़े। जो नाम बुलाता है उसको अपने आप को उसके हवाले कर देना चाहिए, तुमने नाम बोला है भगवान का नाम बोला है बोलने के लिए क्या सेवा। थैंक यू वेरी मच फॉर चैंटिंग हरे कृष्ण वंस पटना, प्लीज रेगुलर चैनल करो। कहता है कि क्या सेवा करूंगा, नित्य
नित्यानंद प्रभु के तो तुम उसे खरीद लो, एक बार नाम बोल कर मैं बेचा जाऊंगा, इतना सस्ता मैं अपनी कोई कीमत नहीं समझता। अवाद कर दो और सच में गुरु तुम जानते हैं ये आएगा सेवा करने आएगा, मैं फंस जाऊ। भौतिकवादी क्या सोचता है, मैंने हाँ तो बोल दी, अरे नाम बोलूंगा लेकिन ये तो आएंगे ही रहेगा, वहां भी हरि नाम का हल्ला मचा देंगे, प्रसाद बनाना पड़ता है। अरे हमें तो इसी ढंग से ये फंसा गया है, हम दूर भागते हैं। सच बताओ बहुत सारे दूर भागते लेकिन ये हरि बोल वाले पीछा छोड़ते नहीं। सही है, दूर भागने की प्रवृत्ति बहुत है, फिर भी जिनकी भक्ति में जिनके जीवन में भक्ति का दिल तो है ही लेकिन उनको स्कूति के कारण ऊपर आ रहा है, बहुत सुना बहुत सुना लेकिन बहुत अनुभव भी कर दिया। सुनते तो हम अभी हरिनाम नहीं करते लेकिन जब प्रति प्रति सोचा जाएंगे मूर्ता तो है फिर भी हमको उपाय करना चाहिए। के पास तुरंत जवाब होता है, देख अरे तेरे सारे दुख कट जाए, लेकिन धीरे धीरे जो अपने आप को उसको समझाने के लिए भी बेच देता है ऐसा भक्त सक्षम बनता है, उसमें आपकी शक्ति का परिचय दूसरा कर सकता है और खुद भी कर सकता है। इसलिए भगवान का नाम ही हमें माध्यम बनाकर भक्त बनाता है और दूसरों को भी भक्त बनाता है, हमें प्रज्वलित बनाता है। इसलिए हमें कोई अभिमान की आवश्यकता रहती नहीं। देखो हमने 5 भक्त बना दिए, बाद में इसके लिए कुछ कर मालूम नहीं, 5 गुना बेचोगे अपने और सबकी भक्ति यथावत पकी रहे, इनको शिक्षा देना इनका मार्गदर्शन देना ये कौन करता है, कौन से धार्मिक संस्थान ने इसमें बताया है? ये तो प्रभुपाद जी के पास है। प्रभुपाद जी कहते हैं यदि मुझे कोई यश देता है तो मैं इतना करूंगा जरूर, मैं अपने गुरुवार की आज्ञा का पालन कर रहा हूं, बाकी वो है मेरे। यदि कोई भी व्यक्ति अपने गुरु के आदेश आध्यात्मिक आदेश करता है उसका पालन करके सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त कर सकता है, लेकिन अपने आप को बेचने की तैयारी होनी चाहिए। जिन्होंने अहंकार होता है वो अपने आप को बेचेंगे नहीं, दूसरों को खरीदने की तैयारी होता है। हम खरीदार नहीं है, हम तो बिकने वाली वस्तु है। नित्यानंद प्रभु सिर्फ अपने आप को खरीदने की बात नहीं है, वो ऐसी प्रेम वाली जबरदस्ती करते हैं कि वही वो भूमि पर गिर पड़ते हैं और दूर में लपेट आते हैं। यहां छोड़ के नहीं जाऊंगा तो एक बात अभी हम बोलते जब तक बोलता नहीं तब तक नित्यानंद वहां से उठेंगे। आजकल कोई किसी के घर में प्रचार करने जाता है
और ऐसा अनुकरण करेगा तो वो क्या कहेंगे, पुलिस बुलाओ, इनको कहो कि अपनी अपनी जायदाद में ये जबरदस्ती कर रहा है, हटाओ उनको। लेकिन ऐसा मिथ्या अनुकरण नहीं करना। ये जो भाव है ये तो पराकाष्ठा का भाव है, लेकिन उससे हमें ये सबक सीखना है कि चैतन्य महाप्रभु ने ये आवश्यकता इसलिए रखी है क्योंकि हम दुनियादारी से खोखले हो जाएंगे, हम किसी पर भरोसा नहीं करेंगे, सिर्फ भगवान के चरण कमल का ही भरोसा करेंगे, तब हमें इनके अलावा कोई आश्रय भी दूसरा होगा ऐसे सोचने की आवश्यकता। इतना दृढ़ विश्वास है तो एक बल भी नित्यानंद भूमि जो इच्छा है सोना पर्वत जय मंधुला ऐसे गिरे जैसे सोना का पर्वत गिर गया। कौन बनवा दिए है सोनार पर्वत
धूल के साथ,
ब्रज की धूली राधा रानी के कलर वाली है, गौरांग जी है तो उसमें लपेटने वाले ऐसे कलर प्राप्त कर देते हैं सोना जैसा। हे न अवतार नित्यानंद प्रभु का ये अवतार है, इनके बारे में यदि किसी को आकर्षण नहीं पैदा इनके चरित्र को जानने का, इनकी लीलाओं जानने का, इनकी विशुद्ध भक्ति चैतन्य महाप्रभु के लिए कैसी, इन्होंने भगवान के नाम का प्रचार करने का आदेश बंगाल में सर्वप्रथम चैतन्य महाप्रभु ने दिया था, इनकी स्वयं तो इच्छा नहीं थी लेकिन आदेश ग्रहण करने के लिए भी ये अवधूत अभी बंगाल में जाकर शादी कर लेते हैं। अवधूत को किसी की परवाह नहीं है, तो इनको पत्नी लेने की क्या आवश्यकता। ऐसा चरित्र नित्यानंद प्रभु का है, अब वो पागलपना छोड़ देते हैं। सर्वप्रथम जो आदेश है उसको ग्रहण करके सारे बंगाल में उन्होंने हरिनाम का प्रचार किया है। शादी करने के पीछे भी लीला है, वसुधा और झामा दोनों बहने वसुधा के लिए उसके पिता ने नित्यानंद प्रभु के पास आए और शादी का प्रस्ताव रखा, विवाह करो आश्रम बना दे। लेकिन एक मुक्त जीव है, इनको चैतन्य महाप्रभु के आदेश में गृहस्थ जीवन का भी अनुभव करना पड़ता है। लेकिन ये तो आध्यात्मिक गृहस्थ जीवन है, वास्तविक गृहस्थ अध्यापक के लिए स्थिरता वाला होता है, नहीं तो धर्म नहीं। जो इंद्रिय रूपता के लिए ही जो जीता है तो वो गृहस्थी नहीं कहलाता, वो गृहनिधि है, जिसकी वृद्धि घर की चार दीवारों के बीच में घिरी रही है वो गृहनिधि कहलाता है, तो गृहस्थ। आदर्श गृहस्थाश्रम में नित्यानंद प्रभु आते हैं, फिर भी इनकी लीलाएं देखें, इनका अल्लर्पण इत्यादि काफी मशहूर है। शादी के दरमियान जो भोजन इत्यादि परोसते हैं तो सबको बिठाया गया, नित्यानंद प्रभु को परोसने के लिए वसुधा तो अंदर थी, लेकिन उसकी बहन जानवा आई, नित्यानंद ने देखा जानवा, तो लक्ष्मी है तो उसने कहा मुझे इसकी शादी कराओ।
से बेकार हुआ।
वो वीरभद्र
वसुधा चली गई, लेकिन जहां वहां का संभाल लिया उसके लिए। भक्ति में उसका लालन पालन करने लगी। नित्यानंद प्रभु प्रचार के लिए घूमते रहे और सारे बंगाल में बहुत सारे नित्यानंद वंश वाले
हो गए
और वंश परंपरा से पश्चिमी भारत में भी वो प्रचार करने आए थे वंश नित्यानंद के बाद। लेकिन उस समय झाड़ू नित्यानंद का पद ले चुके तो झाड़ू सारे अपने गौरी वैष्णव के आदि गुरु माने जाते हैं। उन्होंने बहुत सारे शिष्य बनाए, झाड़ू शिष्य मधु पंडित चैतन्य महाप्रभु का जो निजी परिकर है वृंदावन में, इनका मंदिर राधा गोपीनाथ रामेश्वर वहां मधु मधु पंडित ने जाना माता की सराहना इस ढंग से है कि ये राधा रानी है, ये राधा रानी है और इस समुदाय में राधा रानी ने गोपीनाथ की निजी सेवा सिखाई। तो झरवा माता को राधा रानी ने अपने स्थान में रखकर वो कृष्ण भगवान के दाहिने खड़ी हो गई। तब से वहां झरवा गोपीनाथ और राधा रानी तीनों की सेवा होती है। मधु पंडित के सारे वंश आज भी बहुत सारे मंदिरों में भगवान के श्री विग्रह की सेवा करते हैं। तो ये प्रथा बना रहे मेरे ख्याल से जयपुर में राधा गोविंद जी के भी वही संप्रदाय है। मधु पंडित के वंश में आने वाले सेवा कर रहे हैं। तो ये विशिष्टता जानवर माता की बनी रही जब ये नित्यानंद की अर्धांगिनी कह रहे थे। लेकिन इन दोनों में कोई ऐसा जातीय व्यवहार नहीं बताया जाता। भौतिक व्यवहार नहीं, भगवान की विशुद्ध भक्ति के लिए उन्होंने चैतन्य महाप्रभु का आदेश को ग्रहण करके प्रचार में ही लगे। उन्होंने जितना फैलाया वैसे तो अद्वैताचार्य गोविंद चैतन्य महाप्रभु ने आदेश दिया था, उनके वंश द्वारा भी कुछ फैला था। लेकिन कालक्रम से ये सारी श्रृंखला टूटने लगी और सहजी बनने लगे। तो नित्यानंद नगरी और शक्ति देखी इत्यादि आरोप बहुत सारे विस्तार होने लगे जो परंपरा से चेतन महाप्रभु के उपदेश को ज्यादा उठा नहीं पा रहे। तो असार के लेकिन चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु रोशनदास ठाकुर नरोत्तम दास ठाकुर इत्यादियों से अपनी परंपरा चली आ रही है। तो आप जब देखोगे भगवद गीता के निवेदन में प्रभुपाद की परंपरा बताते हुए कहते हैं कि कृष्ण भगवान से ब्रह्मा, ब्रह्मा से नारद, नारद से व्यास, व्यास से मध्वाचार्य, मनुचार्य से विशिष्ट पद्मनाभ, द्रुहरी माधव, अक्षुभ्य, जय तीर्थ, ज्ञान सिंधु, दयानी, विद्यानिधि, राजेंद्र, जयदर्प, पुरुषोत्तम, ब्रह्मण्य तीर्थ, व्यास तीर्थ, लक्ष्मी पति, यहाँ तक मध्वाचार्य की जो बहुत अनुशासित प्रज्ञान प्रमुख की उपासना करने वाली थी ये श्रृंखला है। लेकिन लक्ष्मी पति के शिष्य माधवेंद्र पुरी हुए हैं, जो वृंदावन में गौरी वैष्णव संप्रदाय को आगे चलाने के लिए माधवेंद्र पुरी से ही ईश्वरपुरी, नित्यानंद और अद्वैत आचार्य ये माधवेंद्र पुरी के शिष्य कहलाते हैं। तो ईश्वरपुरी के पास चैतन्य महाप्रभु ने दीक्षा दी और चैतन्य महाप्रभु से रूप यानी सनातन रघुनाथ जी, कृष्णदास, नरोत्तम, विश्वनाथ, बलदेव, तो ये नरोत्तम दास ठाकुर के समकालीन नित्य परिकर रूप में लोचन दास ठाकुर जी है। ये सब चैतन्य महाप्रभु थे। तब नरोत्तम दास, लोचन दास, कृष्णदास, रघुनाथ जी, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी इत्यादि सीधे चैतन्य महाप्रभु के परिकर थे। लेकिन हमने शुरुआत में सुना कि ये लोचन दास नरहरि सरकार का गुरु मान, नरहरि सरकार रूप गोस्वामी ये समकालीन होते हुए थे। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये विनम्रता का प्रतीक के रूप में चैतन्य महाप्रभु के परिकर होते बावजूद भी इन्होंने कोई अपने नजदीक जो व्यक्तित्व है इनको पूरे गुरु सलाम देकर दीक्षा ग्रहण करते हैं। नरोत्तम दास से बात है, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, बलदेव विद्याभूषण, भक्ति विनोद ठाकुर, जगन्नाथ दादा जी इत्यादि और गौर किशोर भक्ति सिद्धांत सरस्वती इस तरह परंपरा चालू है। तब ये विशुद्ध भक्ति का ज्ञान प्रभुपाद जी इस ढंग से अपनी श्रृंखला में बिना टूटे हुए ले आते हैं। यहाँ विद्यानंद नागरी या अद्वैताचार्य की कोई श्रृंखला का वर्णन नहीं, क्योंकि वो आता है कि ये वो बाहर में अपने मूल धर्म से हटते हैं, इसीलिए श्रृंखला तुरती है। तो ये सब गौरी वैष्णव कहलाएंगे समाज में। हमें इसी तरह परंपरा में बहुत सावधानी रहनी पड़ती है, ये शास्त्र का नियम है और उसमें विनम्रता से जो कुछ होता है। लेकिन हमारी भावना तात्काल हम अपनी भक्ति आगे बढ़ाने के लिए विशुद्ध भक्तों जो अपनी नजदीक है उनको ही ध्यान करें, क्योंकि ये सब हमें मार्गदर्शन देने के लिए हमेशा नजदीक होते हैं। तो लोचन दास ठाकुर कहते हैं कि हम तो पापी रहे ही रहे, लेकिन जो नित्यानंद प्रभु को समझने के लिए उन पर यदि कोई आकर्षण भी नहीं होता तो उसका अवतार नित्यानंद प्रभु की बातें नहीं सुनता है, नित्यानंद प्रभु को जो जानता नहीं तो वो गया काम से, यही पापी सही पापी है, वो हर गए जैसे आता है वैसे ही बिना
आगे चला गया,
यूजलेस। तो ये लोचनदास ठाकुर का आविर्भाव महामहोत्सव है, तो वैष्णवाचार्य के चरण चिन्हों में चलना चाहिए और अपने लिए सार्थक करना चाहिए। बोलो हरे कृष्णा
हरे कृष्णा
हरे कृष्णा
हरे कृष्णा
कृष्णा
कृष्णा कृष्णा
हरे हरे
हरे हरे
हरे राम
हरे राम
हरे राम
हरे राम
राम राम
राम राम
हरे
हरे।
किसी को कोई प्रश्न है? बुद्धि है, ज्यादातर हम थोड़ा लंबा बोलते हैं, इसको एक प्रश्न भी ना कर सकते। भूख लगने का माना भी निकालते तुरंत महाक्षारे गुरुंडे
जाए
शरीर विजय जा।